श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभांशु देवी प्रणमामि। हा देवी काकू भरगद गदयाद्यवाचा जाचेन पत्त भोगी दंडवत उद्भटार्ती अस्य प्रसादमभूतस्य जनस्य कृत्वा अन्धर्विके तव गणीगण। अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डं जागुदरोचि संविदधतं पट्टम्बरस्य स्त्रिया। बिन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजम् ध्यापराधरक्षण चित्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरात प्रत्यक्ष कृष्णचरितम कलिकलमसमुख व्याहर्तुम आरभत भागवत प्रधान। कल मैंने बतलाया था जो परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई और वहाँ पर सुत गोस्वामी जी उग्र सभासुद विराजमान थे और इसके बाद में कितना 40 वर्ष या कितने वर्ष के बाद में कुछ समय बतलाया है 30 वर्ष या कितना
30 साल
नमिषारण्य में सनकादि ऋषियों को सुत गोस्वामी ने ब्रह्मर्षण सूत ने उग्र सुवासुत जी ने ये कथा का वर्णन किया। एक तो सुत गोस्वामी ये बलदेव जी के कृपा पात्र हैं। इन्होंने सप्त हरि कथा भागवत इत्यादि की स्फूर्ति कराई और उस पर भी इन्होंने सुखदेव गोस्वामी के यहाँ से भागवत का श्रवण किया। इसलिए परम तत्वज्ञ और रसिक हैं। उस समय में परीक्षित महाराज जी की राजसभा में श्री कृष्ण के लीला श्रवण में उत्सुक होकर के परीक्षित महाराज जी ने जो प्रश्न किया था सुत गोस्वामी ने सौनक आदि सभा में वो सब प्रश्नों का वर्णन किया जे हमारे सामने में ये प्रश्न सत किए गए थे जिसका कल हमने वर्णन किया था। ये सौनक उस समय में वो सभी भावाविष्ट होकर के सुन रहे थे। सुनना भी बहुत प्रकार का बतलाया गया तामसिक श्रवण राजसिक श्रवण सात्विक श्रवण निर्गुण श्रवण और भाव के श्रवण। ये जिसमें कि तामसिक व्यक्ति इसको श्रवण करता है ये तामसिक धन संपत्ति इत्यादि के लिए जो भूत पिशाच दूर करने के लिए ये सब कथा सुनते सुनाते हैं ये लोग वक्ता और श्रोता दोनों ही तामसिक हैं। जो लोग धन संपत्ति वृद्धि के लिए, पुण्य करने के लिए और उद्धार करने के लिए किसी का ये जो पाठ करते हैं, तो ये सब राजसिक हैं। और जब आत्मकल्याण के लिए सुनते हैं तो ये सात्विक है। उसमें भी कुछ लालसा बनी रहती है सात्विक में, और निर्गुण है अद्वैतवादी इत्यादि यदि सांसारिक आसक्ति सुनते हैं छोड़ करके, और ये सुनते हैं इसलिए कि चित्त की शुद्धि और कुछ नहीं, तो ये सब भी कुछ शुद्ध नहीं है। किंतु जो लोग साधारण रूप में सुनते हैं कि भगवान की भक्ति हो, इसको निर्गुण कह सकते हैं। और जो भाव के साथ में सुनते हैं जैसे बतलाया गया हंस, चक्रवात और एक और ऐसे सोता हूँ, यहाँ पर कह रहे हैं भावाविष्ट होकर के ये सुन रहे हैं भगवान की लीला कथाओं को। ये कह रहे हैं यदि आप लोग इस प्रश्नों को सुनकर के इस प्रकार से विभावित हो रहे हैं, सोच रहे हैं ये सुत गोस्वामी जी, तो हरि कथा का जब कहेंगे सुखदेव गोस्वामी की जो कही हुई बातों को, कृष्ण लीला का चरित्र सुनाऊंगा, तो इनकी क्या स्थिति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बतलाया था भृगुनंदन एवं निशम भृगुनंदन साधुवाद, हे भृगुनंदन, भृगु जी के पुत्र हैं, इसलिए आपको इस प्रकार से हरि रस कथा में आस्वादन तुम्हारा दे करके मैं विस्मित हो रहा हूँ। यदि साधक श्रोता किसी को ऐसा देखे, वक्ता श्रोता का ऐसा देखे, तो उसको उत्साह होता है। इसलिए ऐसे श्रोता को पाकर के इनको बहुत ही आनंद होता है, और हरि कथा भी उसी प्रकार से कहने लगते हैं। हे भृगुनंदन, तुम्हारे पिताजी तो भक्ति से भरे हुए थे, और भगवान को ये निर्धारित किया कि ये कृष्ण ही या नारायण ही, विष्णु ही सबके आराध्य हैं, ब्रह्मा और शंकर इत्यादि नहीं, ये आपने निर्णय किया था। इसलिए आप लोगों में भी ये भक्ति उनसे जरूर आई है, नहीं तो आप लोग इतना इस भाव से नहीं सुन सकते थे। आज भी भगवान विष्णु भृगुलांछन को अभी भी ग्रहण करते हैं, उनके चरणों का चिन्ह दक्षिण रोमावली के रूप में, लक्ष्मी के निवास के रूप में ये ग्रहण करते हैं। सुत गोस्वामी जी नमिषारण्य वासी ऋषियों को उन्होंने बताया, हे ऋषियों, ये सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, परीक्षित महाराज इनको तीन विशेषण दे रहे हैं, भागवत प्रधान, भगवान वैयासकी, एक हुआ भागवत प्रधान, एक वैयासकी और एक भगवान, ये तीन उनको संबोधन दे रहे हैं। अभी हम लोग पहले भागवत प्रधान किसको कहते हैं ये विचार करेंगे। श्रीमद् भागवत में भागवत प्रधान का लक्षण दिया गया है, चैतन्य चरितामृत में भी भागवत का लक्षण दिया गया है, श्रद्धा के अनुसार में वैष्णव भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ, उसमें बतलाया गया है जिनके देखने से कृष्ण प्रेम आए, नाम की तो बात ही क्या, कृष्ण कृष्ण अपने आप जिनके देखने मात्र से ही, और जिनके देखने मात्र से ही कृष्ण प्रेम प्रकट होने लगे, वो है उत्तम महाभागवत वैष्णव प्रधान। जिस क्यों एक भागवत है भक्ति रस पात्र, आर भागवत है भक्ति रस पात्र, एक तो है भक्ति रस का शास्त्र है, भक्ति रस शास्त्र, ये श्रीमद्भागवत जो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो वर्णित किया गया ये भक्ति रस शास्त्र है, और दूसरा है कौन, भक्ति रस का जो पात्र है। तो पात्र कौन है, उत्तम महाभागवत लोग हैं। इसी श्लोक में जो भागवत प्रधान जो कहा गया है, भागवत प्रधान, एक तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में पारंगत होना चाहिए, उस रस में रसिक होना चाहिए, और भक्ति रस का पात्र भी स्वयं हो, दोनों बात, ये दोनों बातें सुखदेव गोस्वामी हैं। ये भक्ति रस का जो शास्त्र है उसमें ये प्रधान है, कौन, उनको जानने वालों में परीक्षित महाराज के लिए नहीं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं भक्ति रस शास्त्र में जो कुछ है उस सब विषयों में उसका रस पान करके ये रसिक है, उसको सब कुछ जानने वाले हैं, और भक्ति रस के तो पात्र ही हैं, दोनों बातें हैं। परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी में ये दोनों चीजें, भक्ति रस शास्त्र भागवत में भी प्रधान है और साथ साथ उसको आस्वादक भी हैं, पात्र भी हैं, भक्ति के पात्र हैं, भक्ति रस के पात्र हैं। सुखदेव गोस्वामी के जीवन चरित्र में देखा जाता है, भागवत में तो नहीं, भागवत में तो ये देखा गया, जन्म से ही परम विरक्त, और वो वन में चले गए, वैराग्य की अंतिम निधि उनके साथ में, और इसके बाद में सुखदेव व्यास जी ने उनको किसी प्रकार से आकर्षण करके उनको भागवत शास्त्र पढ़ाया। निर्गुण्य निष्ठ तो परिनिष्ठ हो, निर्गुण्य में परिनिष्ठित है, परिनिष्ठित माने निर्गुण्य है कृष्ण, निर्गुण उनमें परिनिष्ठित है, उनकी भक्ति में परिनिष्ठित है, और वैराग्यवान है परम सुखदेव गोस्वामी। किंतु पुराणों को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि वो जनक के दरबार में गए थे, व्यास जी ने उनको भेजा, और वहाँ जाकर तो उनको 60 जोड़ियों में उनकी परीक्षा ली गई, और सातों में वो पास रहे, बिना अपमान युक्त रह करके प्रथम ड्योढ़ी में उनको ऐसे ठहरा दिया, 7 दिन तक वैसे पड़े रहे, किंतु वहाँ से हटे नहीं। इसके बाद में उनको भीतर में प्रवेश दिया गया, बड़े आदर जत्न के साथ में, सम्मान के साथ में फूल का माला टाला देकर। तीसरी ड्योढ़ी में सब तरुणी स्त्रियां उनको चारों तरफ से घेर करके और वहाँ के अंतःपुर को दिखला रहे, छोटी छोटी लड़कियाँ उनका स्वागत सत्कार कीर्तन करते हुए अंग भंगी करती हुई उनको घुमा, और सुखदेव गोस्वामी नंगे। इसके बाद में 2-3 दिन वहाँ पर रुक दिया, इसके बाद में फिर ऐसे करते 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 7वीं दौड़ी में राजदरबार में पहुँचे, वहाँ पर अंतिम परीक्षा हुई, नारद ऋषि पहले से बैठे हैं और महाराज जनक जी उनके चरणों के नीचे बैठे हैं, ज्यों ही ये पहुँचे उनको सिंहासन पर बैठा दिया, एक तरफ में नारद और दूसरे तरफ में ये, और बैठाने के बाद में अपनी पत्नी सुनैना जी को सीता जी की मैया को लेकर के बैठा दिया, 16 श्रृंगार 32 आभरण करके बैठा दिया। नारद जी उनको प्रणाम करके नीचे बैठ गए, हट गए, और वो जैसे तैसे बैठे। फिर परीक्षा होने के बाद में तब उन्होंने ज्ञान की बातें इनको सिखलाई, सुखदेव राजा जन्म। तो दोनों को यदि मिला दिया जाए तो कुछ संशय होता है, ये कब की बात है, वो सुखदेव गोस्वामी जन्म के साथ ही साथ में गए और सुखदेव गोस्वामी ने उनको भागवत पढ़ाया, इसके बाद में उनको भेजा ना उसके पहले भेजा, तो कब भेजा, क्योंकि वो जंगल में चले गए तो ये हा पुत्र करते हुए घर लौट आए और बहेलियों को मंत्र दिया, और उस मंत्र में ओह बकियम इत्यादि या पराहा पीड़म नटवर श्लोक दिया और उनको आकर्षण कर दिया। तो जनकपुर में गए होंगे तो पैदल गए, कहाँ ये कहाँ वो सुखदेव गोस्वामी और वहाँ थे बद्रिकाश्रम में, और वहाँ से जनकपुर थोड़ी दूर नहीं है, और वहाँ से आते जाते ये तो परमहंस आदमी हैं तो कुछ वर्ष, एक वर्ष लग गया होगा आने जाने और सुनने समझने में, या 6 महीना लग गया होगा। तो ऐसा तो मालूम नहीं होता। विशेष करके सुखदेव गोस्वामी जनक जी का समय कब है? 24वें चतुर्युगी, 24वां चतुर्युगी में रामचंद्र जी आए, उस समय राजा जनक थे। त्रेता युग, और वो भी इस त्रेता युग में नहीं, 24वें चतुर्युग, 28वें, इस ये कौन सा ये है मनमंत्र, 28वां है, और 28वें मनमंत्र का ये कौन सा चतुर्युग है? सप्तम मनमंत्र है, ये सप्तम मनमंत्र का ये 28वां चतुर्युगी के अंतर्गत में अभी कलयुग है, इसके पहले द्वापर था। तो इसमें आए कृष्णचंद्र जी, इनके समय में सुखदेव गोस्वामी इनके बाद में हुए। जब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तब सुखदेव की कथा आती है। तो इसका मतलब हुआ कि 28वें चतुर्युगी में नहीं, सप्तम मनमंत्र के 28वें चतुर्युगी में ये सुखदेव गोस्वामी जी से ये श्रीमद्भागवत प्रकट हुआ है। और वो जो बात है वो कब है? 24वां मनमंत्र, 4 मनमंत्र पहले, नहीं 4 चतुर्युगी पहले। तो 4 चतुर्युगी माने होता है एक में 4,16,00,000 वर्ष, ये होता है 1 चतुर्युगी में। और अब बतलाओ 4 चतुर्युगी में कितना हो गया, कितना अंतर?
16 करोड़,
इतना करोड़ वर्ष। इसलिए दोनों एक व्यक्ति हैं कि नहीं इसमें संदेह नहीं है। इसलिए बहुत से सुखों का वर्णन है, और यदि होगा तो फिर ये दूसरे कल्प की लीला है इनकी, इस कल्प की बात नहीं है, ये दूसरे या बहुत दिनों की बात है। उस समय सुख नाम के बहुत से आदमी होते थे, अभी छाया सुख, लीला सुख, असल सुख बहुत से हैं। इसलिए दोनों का सामंजस्य ठीक नहीं बैठता। जिस तरह से प्रबोधानंद और प्रकाशानंद सरस्वती एक नहीं है, क्योंकि उनकी रसिक कविताएं हैं, राधा कृष्ण परक हैं, वो मायावादी, प्रकाशानंद सरस्वती में ये संभव पर नहीं है, ये इतना रसिक हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये या तो कल्पांतर की बात है, और नहीं तो चतुर्युगी, तो 4 युग चतुर्युगी कितने करोड़ 16 करोड़ वर्ष हो जाता है। तो ये सुख दे, ये सुख दे, इसलिए बहुत समय का अंतर है। इसलिए ये रसिक चूड़ामणि जो सुख हैं वैयासकी, ये जो है भागवत प्रधान, ये भागवत प्रधान है पहले से ही। और वो यदि जिनको मान लीजिए जो वहाँ पर गए थे जनक जी के यहाँ, वो ज्ञान प्रधान है, भागवत प्रधान नहीं है, ये तात्पर्य इसका कहने का। वो ज्ञानी भक्त थे, और ये हैं 16 आना उत्तम महाभागवत कृष्ण रस रसिक, ज्ञानी व्यक्तियों के लिए संपूर्ण उपन्यास। हाँ ये बात ठीक है, जन्म से ही अथवा वही सुख गोस्वामी जी आ गए हों इस समय, पहले ज्ञानी प्रधान थे, अब सुखदेव गोस्वामी के यहाँ आ गए, व्यास जी के यहाँ आ गए उसके दर में, और बचपन से उनको 16 वर्ष तक की भागवत कथा सुनाई, और इसके बाद में भी सुनाई। इसलिए इस तरह से सामंजस्य कर, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमारे जी गोस्वामी ने इस चीज़ को ग्रहण किया, ये दोनों को यदि एक मान लेते हैं तो कुछ असुविधा हो सकती है, इसलिए दोनों को एक नहीं मान करके कल्पांतर अथवा जन्मांतर इस प्रकार से लेकर के सामंजस्य किया। इसलिए ये बचपन से ही महाभागवत हैं। ये कौन हैं? राधा जी के श्री सुख, श्रीया सुख, श्री माने क्या, श्री शब्द का षष्ठी में श्री श्रीया दोनों होता है। श्रीया माने श्री जी का, इसलिए उनका ये सुख है, इसलिए ये महाभागवत प्रधान, इसलिए इनको भागवत प्रधान कहा। इसलिए इनको देखने से जो कोई देखेगा क्या होगा, कृष्ण नाम कृष्ण प्रेम उनको आ जाएगा। भागवत में बतलाया, श्रीमद् भागवत में भागवत का लक्षण एकादश स्कंध में बतलाया, नेमी और संवाद में विसृजति हृदयम् नजस्य साक्षात हरि अवसाभिहितो अप्यगौघनाश प्रणय रसनया धृतांघ्रि पदम स भवति भागवत प्रधान, ऐसा कहा गया। महाभागवत का लक्षण क्या है, प्रधान भक्तों में जो हैं भागवत प्रधान का लक्षण क्या, विसृजति हृदयम् नजस्य साक्षात हरि अवसाभि हितो अप्यगौघनाश, एक मिनट के लिए भी जिनके हृदय से समस्त अघों का दूर करने वाले जो कृष्ण हैं वो कभी भी नहीं दूर होते, अर्थात सब समय उनकी स्मृति में वो विभावित रहते हैं, एक मुहूर्त के लिए एक सेकंड के लिए भी उनके हृदय से प्रभु कहीं नहीं दूर होते, अर्थात कभी भी उनकी विस्मृति नहीं होती। हम लोग इतना चेष्टा करते हैं मंत्र जपने के लिए भी नहीं ठीक से हो पाता, हरिनाम करते समय चेष्टा करते हैं, साधु सेवा के लिए चेष्टा करते हैं, कृष्ण की स्मृति कथाओं की स्मृति के लिए कितना चेष्टा करते हैं, किंतु प्राचीन संस्कार वर्तमान कार्य और तरह तरह के ये सब चीजें हम लोगों को भुला देती हैं। अभी कृष्ण का स्मरण का चित्त चला जाएगा कहाँ, इधर चला जाएगा, यदि शरीर में रोग है तब तो कोई बात ही नहीं, भोग है तब तो कोई बात ही नहीं, काम क्रोध है तब तो कोई बात नहीं, मिनट मिनट में दूर हो जाए यदि चित्त को भी लाओ। और विसृजति हृदय न जस साक्षात, मानो साक्षात उनके हृदय में विराजमान कौन, हरि अवसा अभी हितो अपि अगौघनाश, अग के नाश करने वाले ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ उसके घर हृदय में पधारे थे, ये कौन है, ऊपर से अगासुर का विनाश करने वाले ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, ये अवश्य होकर कभी भी भूल से एक मिनट के लिए जिनके हृदय से बाहर नहीं जाते, क्यों, प्रणय रसनया धृतांग्री पद्म, ये लोग अपनी प्रणय रूपी रसना से डोरी से प्रणय की डोरी से जिनके चरण कमलों को बांध रखा है ये जाएंगे कैसे, जा ही नहीं सकते, चरण कमलों को उन्होंने प्रणय की रसना, प्रणय रसना माने क्या, प्रेम स्नेह मान प्रणय, प्रणय की उस प्रणय की रचना से इन्होंने बांध रखा है, इसलिए कैसे जाएंगे, इसलिए इनको कहा गया भागवत, दिन रात उसी की चिंता करते हुए कृष्ण के प्रति ऐसे ही उनके चरण बंधे हुए कहीं नहीं जा सकते, ये लोग हैं भागवत प्रधान। इनका यदि किसी का संग हो जाए ना तो उनका गुण जरूर दूसरे में प्रभावित हो जाएगा, इसलिए वो लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं। यदि एक बाबला का वृक्ष, बबुल का वृक्ष चंदन के वृक्ष के थोड़ा सा दूर पर ही रहे तो वो भी चंदन बन जाता है खुशबू से। एक तलवार है या कोई अस्त्र है उसे चंदन को काटो तो इस लोहे में भी उसका सुगंध आ जाता है, तो और की तो बात क्या। इसलिए भक्तों का यदि किसी से संपर्क हो तो उनके भाव उनमें संक्रमित नहीं होंगे, इसलिए उनको दर्शन मात्र से ही कृष्ण प्रेम होता है, भागवतों के लिए कहा गया कि देखे ना देखे तार मूर्ति, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरे तार इष्ट देवर मूर्ति। ये है भागवत प्रधान का लक्षण। श्रीमद् भागवत में बहुत से श्लोक बतलाए हैं भागवत प्रधान के लिए। हमने एक बार सबको याद करवाया था, हमको भी याद था, फिर क्रम से वो सब भूल गया। पहले ये भागवत का क्लास, जैव धर्म का क्लास, गीता का क्लास, इन सब का श्लोकों को याद कराने का क्लास हुआ करता था। अब मुझे समय नहीं मिलता, शरीर भी अस्वस्थ नहीं। आप लोग सम्मिल करके इस सब चीज़ का अनुशीलन कीजिए, इसे भक्ति में निष्ठा बढ़ती है, सिद्धांत का भी ज्ञान होता है, उसे परिपक्वता होती है। सुखदेव गोस्वामी, अच्छा एकाद परमहंस सुख चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी ही भागवत प्रधान और भागवत में लिखे हुए लक्षणों के अनुसार में परम भागवत था, भागवत प्रधान है। और यही कारण था कि व्यास जी ने इनको गद्दी पर बैठा करके, व्यास गद्दी पर बैठा करके हरि कथा में से कहा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि नाना प्रकार के वासनाओं से विशिष्ट हम लोगों में क्या है, यही भुक्ति मुक्ति सिद्धि, तरह तरह की वासना है। यदि चप्पल हमारा खो गया तो दिन रात चप्पल की चिंता होगी, भगवान की चिंता नहीं होती, चप्पल खो गया। यदि और कुछ हो गया इधर उधर, कमलिया यदि चली गई, कमलिया लंगोटी एक इधर चली गई, दिन रात कमली कमली कमली, कुछ भी इधर उधर हो गया है, देखो जैसे क्या होता है। इसलिए भोगों का छोड़ना सहज नहीं है, कहना एक है छोड़ना। इसलिए भोग छोड़ देंगे जब समय आएगा तो वो ठीक वो मालूम हो जाएगा कहाँ हमारा चित्त है। मुक्ति, कोई भी कष्ट हो, थोड़े से आंख में दर्द होने लगे, शरीर में दर्द होने लगे, थोड़ा सा गठिया बाई हो जाए, कोई भी कुछ हो जाए तो क्या होगा, डॉक्टर है, वैद्य है, इधर से उधर से है, योग है, तस्य साधन कर उसको तो दूर करने की चेष्टा करेंगे। सिद्धि, भगवान ने सिद्धि नहीं दिया नहीं तो सिद्धि अभी हो जाने, तो हम तो सिद्धि सबसे पहले लें, बस चुटकी बजाया और ये चीज आ गई। किसी को कह दे तुम्हारा रोग दूर हो जाए, रोग इसे होगा क्या, जो कहेंगे सब हमारा हो जाएगा, और जिनसे जो कहेंगे जो भैया 1,00,000 रुपया दे दो तुम्हारा, क्या करेगा, बढ़ते 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 विलास में फंस करके मरेगा। तो ये कर्मी है, इसका बाद में ज्ञानी योगी प्रभृति उस सभा में उपस्थित है, कहां, जहां पर कि सुखदेव गोस्वामी जी कथा बोल रहे हैं। अधिकांश समझो जो ज्ञानी मुक्ति चाहने वाले और कर्मी भोगी सभी उसमें उपस्थित हुए हैं। महाराज परीक्षित परम गोपनीय कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जब उनके लिए बात कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं परीक्षित की सभा में, उसके पहले कृष्ण की कथा कहीं नहीं हुई थी, हुई थी पद्म पुराण इत्यादि में जो कुछ उल्लेख हुआ होगा वही सब लोग उनके संबंध में जानते हैं, किंतु इतने व्यापक रूप में जो आज हम भागवत के माध्यम से जान रहे हैं इसका प्रचार एकदम नहीं था। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये भी नहीं था, उसे नारायणी स्वयं भगवान है और उससे उनके ये अवतारों में ये परिगणित होकर के थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। उसमें भी कंस को मारा, चारुण को मारा, ये तो आ गया होगा महाभारत युद्ध में, वो कृष्ण ने ऐसा किया था क्योंकि महाभारत पहले हुआ है। और सब लीलाएं हुई, किंतु उन्होंने जसोदा जी का स्तन किया, जसोदा जी ने अपने प्रेम से इनको बांध दिया। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं और मुहु रहो रसिका भू भाविका, ये सब चीजें कृष्ण किया, रासलीला और सब जो लीलाएं उद्धव संदेश है ये सब नहीं किया, एकदम आवृत था ये सब। ये सुखदेव गोस्वामी के परीक्षित संवाद के बाद से ये प्रकाश हुआ। तो जिस समय में ये लोग सब थे योगी कर्मी ज्ञानी, और उस समय में ऐसे कृष्ण संबंधी इन्होंने प्रश्न किया। वहां पर कुछ लोग थे नित्य परिषद भी थे, जैसे कि व्यास हैं वो तो भगवत अवतार हैं, नारद हैं, पराशर हैं और सब ऋषि लोग हैं, इसलिए यदि इन कथाओं को यदि कहें तो अनाधिकारी वो हैं, अनाधिकारी के निकट अपनी गोपनीय लीलाओं को प्रकाश करना ये उचित नहीं, इसलिए नहीं कहना चाहिए। यदि कोई कर्मी है ज्ञानी है उसको तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसको रासलीला कथा चिरहरण की लीला इत्यादि सुनाएंगे या उद्धव संदेश इत्यादि कथाएं, ये सब नहीं होगा। विशेष करके ज्ञानी लोग जो हैं इन कथाओं को प्राकृत मानते हैं, निर्गुण नहीं मानते, भगवान का जन्म कर्म वो लोग नहीं मानते, तो इसलिए भगवान की जन्म कर्म संबंधी लीलाओं का यदि वर्णन करते हैं तो उस पर वो विश्वास नहीं करेंगे, खिल्ली उड़ाए। इस तरह से उनका भी अपराध हुआ, इनका भी अपराध हुआ। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के निकट में भगवान की ऐसी लीलाओं कथाओं का प्रकाश नहीं होना चाहिए। आप लोग भी तत्व इत्यादि की बात करेंगे, सब जगह ये मंजरी भाव और ये रास और ये सबको गोपन यथाजुक्त रखना चाहिए। इसलिए बतला रहे हैं ये इसको गोपन रखना उचित है। इसलिए परीक्षित की सभा में परीक्षित महाराज जी को तो लीला कथा श्रवण करने की अत्यंत लालसा है, उनका विश्वास भी है, कृष्ण के बड़े कृपा पात्र हैं, ये तो योग्य हैं, और बाकी उसमें सुखदेव ये व्यास जी हैं नारद जी हैं ये तो कुछ है, किंतु अधिकांश 99% लोग कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी। क्यों करने से विश्वास नहीं करेंगे? अरे भगवान जो पर ब्रह्म है निराकार है, उनका जन्म थोड़ा होता है, इसलिए उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, इसलिए इनसे नहीं कहना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी क्या ये जानते नहीं हैं? ये जानते हैं, किंतु भागवत प्रधान कहने का ये लक्षण है जो पहले बताया, भागवत प्रधान वही है जिसके देखने से ऐसे कृष्ण प्रेम, जिनके देखने मात्र से ही कृष्ण प्रेम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर परीक्षित महाराज जी सभा में हरि कथा कर रहे हैं दर्शन से ही वो कृतार्थ हो जाते हैं सब लोग, और पुनः यदि दर्शन के साथ साथ में हरि कथा इत्यादि दे करके करें उनका चित्त संशोधन नहीं होगा। ये कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी के लिए हो सकता है जो ऐसा प्रयास न करे, किंतु उत्तम भागवत में ये क्षमता है, शक्ति है, वो सबको ही परिवर्तन कर सकते हैं। कर्मी ज्ञानी योगी जितने हैं सब लोगों का चित्त परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे नारद जी के लिए है, प्रहलाद महाराज जी को गर्भ में ही वो चीज श्रवण के द्वारा ये कर, व्यास जी ने ऐसा कर दिया, इन लोगों के लिए संभव है। इसलिए इस शब्द के द्वारा भागवत प्रधान के लक्षणों से देखने से यह है, पहला लक्षण क्या है, जिनके देखने से ही कृष्ण प्रेम दूसरों को हो जाए, नाम स्मरण होने, ये भागवत प्रधान है, इसलिए इनको भागवत प्रधान। ये वहाँ पर जितने लोग थे अपने दर्शन जेसांग संस्मरणात, क्या है वो एकादश स्कंद में जेसांग संस्मरण पुंसो सद्य, वो पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अपना अपने दर्शन दे करके यदि हरि कथा कहे तो फिर बात ही क्या है। इसलिए उत्तम अध्यायकारी होने के नाते उनके अंदर में जैसी वासना क्यों न हो, उत्तम अधिकारी के अचिंत शक्ति के प्रभाव से श्री श्री राधा गोविंद के चरणों में शमन की वासना उत्पन्न हो जाती है। यदि कृष्ण के संपर्क से काली जैसे अत्यंत विरोधी, उसको क्या कहा जाएगा, कर्मी कहा जाए, न ज्ञानी कहा जाएगा, न असुर कहा जाएगा, क्या कहा जाए, कृष्ण का विरोधी असुर तरह एक तरह से, और देखो उसको प्रेमा भक्ति हो गई। भगवान और भक्त भी अभिन्न है, इसलिए इनके द्वारा ये संभव, इसलिए इनको पहला नंबर बतलाया गया भागवत प्रधान। सब उत्तम श्लोक पदार बिंदु निषेवया अकिंचन अकिंचन शब्द लब्ध्वा तन्मन पराण निवृत्ति आत्मनो मुहुर् दुस्संगम अदीनस्य मन समं व्यधार। इसका अर्थ है प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में इस श्लोक को बतलाया गया है। स उत्तम श्लोक पदार बिंदयो निषेवया अकिंचन संग लब्ध्य। प्रहलाद महाराज जी कितने 60,000 वर्ष तक अपनी माता के घर में रहते समय में अकिंचन और उत्तम श्लोक के चरणों में जिनकी प्रेमा भक्ति है, निश्चला भक्ति है, ऐसे अकिंचन भक्त जो नारद हैं उनके संग से तन्मन परं अपने हृदय की भक्ति उनमें तन्मन विस्तार कर लिया। जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में प्रेमा तेने ब्रह्म हृदय आद कवे, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के हृदय में नारद जी ने भक्ति का संचार किया और परम आनंदमय हो गए प्रहलाद महाराज जी जन्म से ही। मुहुर् दुख संग दीनस्य मनः समं व्यधार। भक्तमणि भक्त चूड़ामणि प्रहलाद मातृ गर्भ में रहते समय में महर्षि नारद ऋषि के संग और उपदेश से गोविंद चरणों में स्मृति लाभ करके सर्वदा प्रेमानंद में पुलकित रहा करते थे और उनके संग महिमा से प्रहलाद महाराज जी के संग में जितने असुर बालक उनके यहाँ पाठशाला में पढ़ते थे उन्होंने सबको भक्ति में बना दिया। ये प्रहलाद महाराज जी का, प्रहलाद नारद जी के संग से ये हुए और प्रहलाद महाराज जी के संग से समस्त लड़कों को एकदम कीर्तन मंडली बना करके परम साधु बना दिया है। ये प्रहलाद महाराज जी का ये संग है। जिनको भगवत भक्ति का गंध नहीं था उनको कर्मी कहे ना योगी कहेंगे ना ज्ञानी कहेंगे ना क्या कहें, विषय भोग की वासनाएं भरी पड़ी थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था, उनके चित्त को शांत भाव ला करके कृष्ण भक्ति उनमें भर दिया। ये भागवत प्रधान कौन, प्रहलाद महाराज जी। अब प्रहलाद महाराज जी भागवत और ये भी सुखदेव गोस्वामी भागवत दोनों को पास में रख दो और विचार करो ये इन दोनों में भागवत प्रधान कौन है। नहीं मुश्किल नहीं है, जो कृष्ण की भक्ति में रस में रंगे हुए कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और गोपियों की चरण की महिमा बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम आशाम हो चरण रेणु जुसाम हम इत्यादि जो कह रहे हैं कहवा रहे हैं और कृष्ण को गोपियों के संदेश में मधुपकित बंधो मार्स पिशाम ग्रीष पत्ना इत्यादि जो कह रहे हैं और जबकि सूर्य ग्रहण हुआ उसमें कौन सा वो उसके पहले का चिरात अभिष्टम गोप्य गोप्य चिराद अभीष्टम, कृष्ण चिराद अभीष्टम, अपने हृदय में कृष्ण को अपने पलकों से हृदय में ले गई और उनको आलिंगन करके पास में बद्ध कर दिया। ये सब कौन प्रहलाद महाराज जी वर्णन किए, वो कहेंगे ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासख्यात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु चे भव लक्षणा क्रियेत भगवती अध्या तन्मन्य भेत मुक्तमम। हाँ, एक श्लोकों में ऐसा दिया गया है जो शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर इनमें से कोई आश्रित करके कृष्ण से संबंध होकर के भजन करे, इस संबंध ज्ञान के साथ में बहुत जल्दी उसकी सिद्धि। किंतु इस रूप में उन्होंने वर्णन नहीं किया। अब ये भागवत प्रधान भी यहीं भी हैं, वो सर्वत्र अपने इष्ट देव को देखते हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी कैसे देखते हैं? राधा जी के हाथों में खेले हैं और ऐसे ऐसे भावों को जो व्यक्त किया भागवत जैसा सब चूड़ामणि ग्रंथ को, इसलिए सप्तम स्कंद से और दशम स्कंद से तुलना की जाए राजपंच अध्याय से, तो मालूम पड़ेगा जे कौन कैसा भक्त। इसलिए इनको कहा गया भागवत प्रधान। भागवत प्रधानों में भी ये परम भागवत है नंबर, इसलिए ये भागवत प्रधान। दूसरा भी बात का क्या बतलाया, बैयासकी और एक भगवान। भगवान शब्द का अर्थ बतला रहे हैं, भगवान अर्थ कितना बजे 7 बज गया ना, ताज यहीं तक रहने दो, एक शब्द का यहाँ व्याख्या किया फिर दूसरा, नहीं तो मैं भी पढ़ लू। खूब अच्छी तरह से समझो, ऐसे उत्तम भक्तों का संग ग्रहण हो इसकी लालसा हो और हम भी ऐसा भागवत होकर के कृष्ण की सेवा कर सके इसकी लालसा जगे, लोभ उत्पन्न हो, इसके लिए प्रयत्न किया जाए। जिस प्रकार से भक्त सब प्रकार के काम क्रोध लोभ मद मोह कर्म ज्ञान योग तपस्या छोड़ करके अन्याभिलाष शून्य हो करके ज्ञान कर्म को छोड़ करके अनुकूल लेने कृष्णानुशीलनम होता है, ऐसा यदि करें तो ऐसी भक्ति हो सके। आज वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा साधुवादम वैयासकी स भगवान नत विष्णुरात प्रत्यर्च कृष्णचरितम कलिकल्मषघ्नम व्याहर्तुम् आरभत भागवत प्रधान। कल इस श्लोक की टीका मैंने बतलाई थी जिसमें सुख गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रधान बतलाया और वैयासकी भगवान और विष्णु वैयासकी भगवान और भागवत प्रधान उनको तीन बतलाया और उनको विष्णु रात बतलाया, परीक्षित महाराज को विष्णु रात बतलाया। परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को साधुवाद दिया क्योंकि इन्होंने उनकी प्रशंसा की है, उत्साहित किया है कृष्ण कथा कहने के लिए और वैसे प्रश्न किए जिसमें हमने वैयासकी शब्द का तात्पर्य बतलाया। भागवत प्रधान का, भागवत प्रधान का तात्पर्य बतलाया। भागवत प्रधान में ये बतलाया, जो श्रीमद् भागवत में बतलाया, विसृजति हृदयम् नजस्य साक्षात् हरि अवसात् अभिहितो अपि अगौघनाश प्रणय रसनया धृतांग्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान। बहुत से बतलाया है 10-12 श्लोक में, किंतु इसको एक किया, जिसका ये तात्पर्य है जो सब समय अपनी प्रणय रूपी रसना के द्वारा, रसी के द्वारा भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में बांध करके रखते हैं और एक मुहूर्त के लिए, एक सेकंड के लिए भी अपने हृदय से उनको कभी नहीं त्याग करते, इसलिए ये उत्तम भागवत है। उत्तम भागवत का चैतन्य चरितामृत में अर्थ दिया, तात्पर्य जिनको सब समय भगवत स्फूर्ति होती है, स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, उनको मूर्ति को, ऊपरी की मूर्ति को नहीं देख करके वो कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा में सब समय संलग्न है, ये देखते हैं, उसके स्वरूपगत प्रेम को वो दर्शन करते हैं। और जिनके देखने से, दृष्टि मात्र से ही प्राणी मात्र में प्रेम का संचार हो जाता है, देख ले आइस कृष्ण प्रेम, जिनके दर्शन मात्र से ही उसको कृष्ण प्रेम हो जाता है। तो ये बतलाया कि उस सभा में, परीक्षित महाराज जी के सभा में अधिकांश लोग कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, विषयी, मूढ़, सब प्रकार के लोग उसमें हैं, इसलिए कृष्ण कथा रूपी अत्यंत रहस्य युक्त लीला कथाओं को उस सभा